पेश है आज के मुख्य समाचार रुशारी जैन के साथ। न्यू साउथ वेल्स ने घोषित किए नए कोरोना सहायता व्यवसाय पैकेज। भारत में बढ़ रहे हैं फिर कोरोना मामले और महिला टेस्ट श्रृंखलाओं को 5 दिन का करने की मांग तेज। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के चलते ऑस्ट्रेलिया के दो सबसे सघन राज्यों में 72 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। न्यू साउथ वेल्स में आज 52 और विक्टोरिया में 20 कोरोना संबंधी मृत्यु दर्ज की गई हैं। आज न्यू साउथ वेल्स में 13,524 कोरोना मामले सामने आए हैं। हालांकि अस्पतालों में संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। रविवार को 2,693 कोरोना संक्रमित अस्पताल में थे, जबकि ये संख्या शुक्रवार को 2,737 की थी। वहीं राज्य में आज गहन चिकित्सा केंद्र में 182 लोग देखभाल पा रहे हैं। दूसरी तरफ विक्टोरिया में रविवार को 889 कोरोना संक्रमित अस्पताल में भर्ती थे, जो आंकड़ा शुक्रवार को 988 का था। राज्य में आज 10,589 नए कोरोना संक्रमण मामले सामने आए हैं। न्यू साउथ वेल्स के उच्चतम व्यवसाय संगठन बिजनेस NSW का कहना है कि सरकार ने व्यवसायों को समर्थन देने के लिए एक नए कोरोना पैकेज की घोषणा की है। इससे व्यवसायों को खुले रहने में सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि इस पैकेज की कुल कीमत $1 बिलियन से भी अधिक होगी। मौजूदा ओमिक्रॉन प्रकोप को देखते हुए 75,000 से $50 मिलियन तक की कमाई वाले व्यवसायों को इस पैकेज के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। ये पैकेज आगामी 1 फरवरी से लागू होगा, जिसमें $75,000 से $50 मिलियन की कमाई वाले व्यवसायों को $5,000 या देय वेतन के 20% प्रति सप्ताह तक की मदद दी जाएगी। शर्त यह होगी कि इन सब संस्थानों ने जनवरी के महीने में 40% तक का व्यवसाय कोरोना के चलते खोया हो और फरवरी के लिए भी व्यवसाय में ऐसी ही गिरावट अनुमानित हो। स्मॉल बिजनेस फीस एंड चार्जेस रिबेट कार्यक्रम को $3,000 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और कार्य क्षेत्र में प्रयोग होने वाले रैपिड एंटीजन टेस्ट जाँचों की 50% कीमत भी इसमें शामिल की जाएगी। इसके अलावा व्यवसायिक मकान मालिकों के लिए 13 मार्च तक सहायता को बढ़ा दिया गया है। श्री पेरोटे ने आज सुबह स्काई न्यूज से बात करते हुए कहा कि ये सहयोग पैकेज जरूरी है।
As we move through, there'll be less requirement for financial need. But when I look at the data that I've seen, when I look at the, some of the challenges we've had with businesses over the summer break, it makes perfect sense from my perspective to provide that support to businesses this time around.
All right, well, let me ask you briefly.
उधर ऐश पार्टी पिछले 44 वर्ष में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई बन गई हैं। विश्व नंबर 1 पार्टी ने मेलबर्न पार्क में एक स्वप्न पूरा करते हुए अमरीकी खिलाड़ी डैनियल कॉलिंस को हराकर ये खिताब जीता। ये मैच बीते आधे शतक में महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए सबसे प्रतीक्षित मैच था। पिछली रात के आराम के बाद सुश्री पार्टी मीडिया से बात करते हुए आज बोली कि ये एक अभूतपूर्व भावना है और उन्हें अपनी टीम पर गर्व है।
It's been incredible, I think, to be able to celebrate with my team last night and really enjoy the experience together. It's been amazing, but I'm looking forward to a little bit of rest and just being able to let it soak all in, because it's been an incredible fortnight for all of us, and yeah, I couldn't be more proud of all of us.
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि अमरीकी गायक कान्ये वेस्ट को अपने ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम टूर से पहले पूर्ण टीका प्राप्त करना आवश्यक होगा। 22 बार ग्रैमी जीत चुके श्री वेस्ट मार्च में ऑस्ट्रेलियन टूर पर आने वाले हैं, लेकिन उन्हें उनकी टीका विरोधी विचारों के लिए भी जाना जाता है। ये साफ नहीं है कि उन्हें कोरोना टीका प्राप्त है या नहीं।
The rules are you got to be fully vaccinated. They're the rules. They apply to everybody, as people have seen most recently. It doesn't matter who you are. They're the rules. Follow the rules, you can come. You don't follow the rules, you can't.
यह संदेश तब आता है जब कुछ ही दिन पहले विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक का वीजा टीका की छूट के अमान्य होने के कारण रद्द कर दिया गया था और उन्हें उनके देश वापस भेज दिया गया था। प्रधानमंत्री का वक्तव्य उस दिन आया है जब ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दूसरे दिन लगभग 100 कोरोना मृत्यु दर्ज की है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमरीकी संयुक्त मुख्य अध्यक्ष जनरल मार्क मिली ने रूस से यूक्रेन के मामले में अपने पांव पीछे खींचने को कहा है। हजारों अमरीकी सैनिक हाई अलर्ट पर हैं और रूस भी अपनी सेनाएं तैनात कर रहा है।
We strongly encourage Russia to stand down and to pursue a resolution through diplomacy. Armed force should always be the last resort. If Russia chooses to invade Ukraine, it will not be cost free. in terms of casualties or other significant effects.
जनरल मिली का कहना है कि अमरीकी और नाटो सलाहकारों और प्रशिक्षकों का एक दस्ता यूक्रेन में स्थित है. उन्होंने साथ ही ये साफ किया कि अमरीका ना ही यूक्रेन में कोई सैन्य बेस बना रहा है और ना ही वहां युद्ध के किन्हीं हथियारों या प्रणालियों को स्थापित कर रहा है. उनका कहना है कि अमरीका केवल प्रशिक्षण और व्यवस्थाओं को सुधारने में यूक्रेनियाई रक्षा मंत्रालय की मदद कर रहा है. संयुक्त राष्ट्र महानिदेशक एंटोनियो गुटेरेस ने चीन और दूसरे सभी देश जहां चंद्र नव वर्ष मनाया जाता है को इस त्यौहार की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने इस मौके पर चीन के लोगों और सरकारों को उनके संयुक्त राष्ट्र में योगदान के लिए धन्यवाद भी दिया.
Happy Lunar New Year. I'm pleased to send you my warmest greetings as we begin the Year of the Tiger. I thank China and the Chinese people for your commitment to multilateralism and to the United Nations. I count on your continuous support and cooperation to advance our common agenda and to realize our shared hopes for a peaceful and sustainable future. To do that, we must take concrete action to address real issues in front of us, such as climate change and the COVID-19 pandemic. Together, we must recover and build forward better.
श्री गुटेरेस ने कहा कि वे बीजिंग शरद ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे. SBS सभी ऑस्ट्रेलिया निवासियों को टाइगर यानी बाघ के इस साल में 1 फरवरी से शुरू हो रहे हमारी सभी पटलों पर कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है. कनाडा की राजधानी ओटावा में रविवार को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के अनिवार्य कोरोना रोधी टीके नियमों के विरुद्ध लॉरी चालकों ने एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया है. ये प्रदर्शन, जिसे फ्रीडम कॉन्वॉय का नाम दिया गया है, अब महामारी के दौरान सरकारी अधिकारों के विरुद्ध मुहिम बनता जा रहा है. श्री ट्रूडो ने अक्टूबर माह में फेडरल कामगारों के लिए टीका अनिवार्य कर दिया था और पिछले माह दोनों कनाडा और अमरीका ने सीमा पार आने जाने वाले ट्रक चालकों के लिए टीका अनिवार्य कर दिया था. एक लॉरी ड्राइवर जिन्हें टीका नहीं प्राप्त है, वे कहते हैं कि सीमा पार करने में अब उन्हें आशंका है कि चुनौतियों का सामना करना होगा.
I am not vaccinated. So I left before the 15th of January. The rule in the States wasn't in place yet, but I have other friends that say even no vaccinated now, right now, the US customs they're not enforcing that. So they're still going there. The problem is when we come back.
कनाडा के लगभग 90% अंतर्राष्ट्रीय सीमा ट्रक चालकों को टीके की दोनों खुराकें प्राप्त हैं. कैनेडियन ट्रक अलायंस 4500 ट्रक चालकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है. वे इस प्रदर्शन के खिलाफ हैं. और अब खबरें भारत से. देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं. पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना में 2.34 लाख नए कोरोना मामले सामने आए हैं. वहीं पॉजिटिविटी रेट भी 14.50% हो गई है. राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 165.70 करोड़ टीके दिए जा चुके हैं. भारत में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या 18,84,937 हो चुकी है. इसी बीच कोरोना वायरस महामारी के कारण कामकाजी जीवन में आए बदलावों पर एक वैश्विक अध्ययन बताता है कि अब लोग दफ्तर जाने के बजाय घर पर रहते हुए काम यानी वर्क फ्रॉम होम करने को ही प्राथमिकता दे रहे हैं. टेक टैलेंट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के कारण पहले कर्मचारियों पर दूर रहकर दफ्तर का काम करना थोपा गया था, लेकिन अब 2 साल बाद वर्क फ्रॉम होम नया चलन बन गया है. नई आदतें लोगों की जिंदगी में अपनी जगह बना चुकी हैं और इस अध्ययन में शामिल लोगों में से 82% लोगों का कहना है कि वे दफ्तर नहीं जाना चाहते और घर से ही काम करना चाहते हैं. साइकी के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी करुणजीत कुमार धीर ने कहा कि दूरस्थ काम यानी डिस्टेंस वर्किंग का दुनिया में अब स्वागत है. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि दुनिया में हो रहे महत्वपूर्ण बदलावों के मद्देनज़र भारत और इजराइल के आपसी संबंधों का महत्व और बढ़ गया है और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के नए लक्ष्य निर्धारित करने का इससे अच्छा अवसर और नहीं हो सकता. भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के मद्देनज़र प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी किया और उम्मीद जताई कि इजराइल के साथ भारत की दोस्ती आने वाले दशकों में आपसी योग के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी. इस मौके पर दिल्ली का 3 मूर्ति चौक भी लेजर लाइटों से सजाया गया था. और अब डॉलर का हाल. आज यानी रविवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 52.43 रुपये और अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 70 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। कैनबरा में जारी महिला एशेज टेस्ट अपने चौथे दिन में प्रवेश कर गया है। भारी बारिश और पांचवें दिन की कमी के बावजूद इंग्लैंड को दिन से उम्मीद रही कि वे अब भी अपनी विजय सुनिश्चित कर सकती है। महिला क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट श्रृंखला में पुरुष खेलों की ही तरह पांचवें दिन की मांग करते रहे हैं। फिलहाल 60% महिला टेस्ट श्रृंखलाएं पांचवें दिन की कमी में ड्रॉ होकर रह जाती हैं। और अंत में एक नज़र कल यानी सोमवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल अधिकांश रूप से धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में भी कल धूप ही धूप है। अधिकतम तापमान 33 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में उमस के साथ बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 30 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में बरसात की आशंका है। अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में हल्की फुल्की बौछार का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल बरसात की आशंका है। अधिकतम तापमान 32 जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप खिली रहेगी। दिल्ली का अधिकतम तापमान 22 जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।